نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ کے کلام کو سننے سے پہلے بالکل اندر باہر خاموشی کریں خود سے کہیں کیا میں اللہ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں کیونکہ ذہن میں اگر کوئی اور بات ہو تو اللہ کی بات اسی طرح ہو جاتی ہے جیسے گلاس میں پہلے سے کوئی گندگی ہو یا کچھ بھی ہو اور آپ اس میں دوسری چیز ڈال دیں ایون اگر آپ دیکھیں کہ کوئی خراب چیز نہ بھی ہو لیکن آپ بچے ہوئے دودھ کے اندر اورنج جوس ڈال دیں تو کیا ہوگا نہ وہ دودھ رہے گا نہ وہ جوس رہے گا اسی سے سمجھ لیں کہ جب ہمارے ذہنوں میں دنیا کا کوئی فکر کوئی سوچ کوئی تفکر ہوتا ہے پھر اسی کو سامنے رکھ کر ہم قرآن کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو وہ اللہ کا کلام نہیں بنتا اور اس میں کچھ نہ کچھ ہماری اپنی ہی سوچیں مل جاتی ہیں آیت پڑھنے سے پہلے میں کیوں رکی کہ میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں کہ کیا کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے کہ جو مجھے اس بات کو سننے سے دور کرے اور مجھے امید ہے کہ نہیں ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں آیت 83 سورۃ الواقعہ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو یعنی تم خود سیلف سفیشنٹ ہو تم اپنے جینے مرنے پر خود قادر ہو جیسے آج کے انسان کا دعویٰ ہے الا ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں ہم سب کر سکتے ہیں ہم اپنے خدا خود ہیں ہم اپنے کام خود بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کسی کے انڈر نہیں ہو اور اپنے خیال میں تم سچے ہو تو ذرا ایک کام تو کر کے دکھاؤ اور وہ کام کیا ہے جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے سوچئے کسی کے ڈیتھ بیڈ کا منظر ذہن میں لائیے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے تم نے سائنس میں ترقی کی تم نے کمپیوٹر ایجاد کیے تم نے ہبل بنا لیا تم زمینوں کو چھوڑ کر اب آسمانوں کے سفر کرتے ہو تو آؤ ذرا اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس ڈال دو کیا مشکل ہے اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے اور یہ بات احادیث سے بھی ملتی ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں نیک ہے تو جنت کے فرشتے اور بد ہے تو جہنم کے فرشتے تو اشارہ ہم کہہ کر اللہ نے اپنی قدرت اپنا اشارہ یا اپنے بھیجے ہوئے قاصد ان کی طرف کر دیا کہ ہم تمہارے قریب ہوتے ہیں چاہے وہ تمہارا قریبی تھا لیکن اب ہم اس کے قریبی ہوں گے تمہیں نظر نہیں آتے یہ اور بات ہے اب یہاں تک تو سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے یہ تو دنیا سے جانے کی گھڑی ہے لیکن آگے جانے والے تین مختلف انجاموں سے دو چار ہوتے ہیں کون کون سے فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّاتُ نَعِيمٍ پھر اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے یعنی پھر غم کیسا ایسی موت تو بار بار آئے اور ایسی موت تو ہر ایک کو آئے اور ایسی موت کا تو انتظار اسی کا نام تو زندگی ہے زندگی کیا ہے موت کا انتظار شرط ایک ہے کہ زندگی ویسی ہو جیسی زندگی دینے والے نے چاہا جس نے زندگی بھر تقاضے پورے کیے جو رب نے چاہا اس نے کیا جو من نے چاہا سوچا آگے جا کے لے لیں گے اس کے لیے تو موت ایک تحفہ ہے اس کے لیے تو موت وہ لمحہ ہے جس کے لیے لڑکیاں ساری زندگی انتظار کرتی ہیں زندگی میں کئی لمحے ایسے آتے ہیں جب زندگی میں ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جانا ہوتا ہے इंतकाल हो गए, मूव हो गए, और एक बहुत बड़ी रुखसती तो हम सभी जानते हैं शादी की सूरत में होती है, जो मर्जी कर लें लेकिन इंतजार माँ बाप को भी होता है, बच्चियों को भी होता है कि कब वो दिन आएगा जब रुखसत होंगे। रोएं धोएं जो भी करें, दिल में खुश हैं जो भी है, लेकिन दिल में बहुत अरमान होते हैं कि हमारी भी रुखसती हो। तो शादी क्या है? एक घर से दूसरे घर जाना। तो मौत क्या है? मौत फना नहीं है। आज कुछ जुमले बोलती जाऊंगी बीच बीच में, उसको बाद में जमा करके आप मौत का नुक्ता नजर लोगों को दिखा सकते हैं। मौत क्या है? जिंदगी। जिंदगी क्या है? मौत का इंतजार। मौत क्या है? जिंदगी का जोड़ा, कपल, जिसके बगैर जिंदगी अधूरी है। आप कह सकते हैं कि जिंदगी नाम है आने का, तो मौत नाम है जाने का। सीधी सी बात है। आप इस कमरे में आए, आते ही आपने पूछा कि जाएंगे कब वापस। एक दरवाजे से आए तो दूसरे में गए। और ये मेरे और आपकी बात नहीं है, हजरत नूह अलैहि सलाम के बारे में आता है, जिनको अल्लाह ताला ने 950 साल तक की जिंदगी दी थी मोजसे के तौर पर। किसी ने उनसे पूछा कि सुनाइए क्या लग रहा है, 1,000 साल की जिंदगी? आप जरा पीछे सोचे, 10 सदियां गुजर गई और आप अभी तक जिए रहे, क्या लगेगा? बोर हो गए और बहुत हो गया, दिस दिस दैट इज दैट, हाँ नहीं का, सुनाइए क्या लग रहा है, कैसी जिंदगी बसर की? कहने लगे, ऐसे लगता है कि कमरे के एक दरवाजे से दाखिल हुआ था और दूसरे से निकलो। मौत फना का नाम नहीं, मौत मुंतकली है। एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जाना, दैट्स इट। बस आगे जाके तो बात आपके अपने इख्तियार की है। छोटे घर से बड़े में जाएं तो कैसा लगता? खुशी होती है ना? आप रहती थी 500 गज के घर में, अब आपको अल्लाह ने 2,000 गज का घर दे दिया। पहले घर था 20 साल 25 साल पुराना, सीम लगी हुई और न जाने क्या कुछ। आप जा रही हैं अब ब्रांड न्यू घर में, मुझे बताइए कितने लोग हैं जो रोते हुए जाएंगे? ठीक है, तब्दीली थोड़ी सी तो मुश्किल होती है, खुशी के वक्त भी आते हैं तो उस वक्त भी इंसान इमोशनल हो ही जाता है, लेकिन आफ्टर ऑल सुकून, आज बेचैनी है कल चैन में बदल जाएगी। तो मौत फना का नाम नहीं है। मैं और आप इस दुनिया से उठकर एक अगली दुनिया में जाकर सेट हो जाते हैं। वहां जाने के एतबार से इस आयत में हम देख रहे हैं कि सबसे बेहतरीन मुकाम क्या है। फम इन काना मिनल मुकर्रबीन, और मुकर्रब कुर्बत से, जिसने सारी जिंदगी खपा दी, जिसने सारी जिंदगी खपा दी रब का कुर्ब पाने के लिए। और रब का कुर्ब किस चीज से मिलता है? वस्जुद वक्तरिब, सजदे करते जाओ और रब का कुर्ब पाते जाओ। जिस बंदे ने सारी जिंदगी रब का कुर्ब पाया, चाहे लोगों ने उसको छोड़ दिया, लोग छोड़ देते हैं, याद रखिएगा, अल्लाह वाला बनने की एक अलामत ये है कि दुनिया वाले वक्ती तौर पे रूठ जाते हैं। अगर आप अल्लाह वाली बने और कोई आपसे रूठे भी ना, तो चेक करें कि पूरी बनी भी है कि नहीं बनी है। मिसाल सबसे बड़ी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद है, सादिक और अमीन, एप्पल ऑफ द आई, वही चचा जो आपकी पैदाइश पे खुशी से सुहैबा को आजाद करता है कि आज मेरे भाई के घर बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन जब उस बच्चे ने अल्लाह का कुर्ब पाना चाहा, इकरा बिस्मि रब्बी कल्लसी की वही उतरी, तो वही चचा दुश्मन हो कहता है कि तब्बत यदा ए मोहम्मद, ए मोहम्मद नाउज बिल्ला आपके हाथ ही टूट जाए। तो याद रखिए, जिंदगी का खुलासा अल्लाह का कुर्ब है। मैं और आप इस दुनिया में क्यों भेजे गए? ताकि हम अल्लाह का कुर्ब पाए। एक लफ्ज की कहानी है जिंदगी की, अल्लाह का कुर्ब पाओ, अल्लाह की मोहब्बत। और अल्लाह का कुर्ब पाने के कुछ जरिए उसने बता दिए, बस उसको मान लो। उसी का नाम इस्लाम है, उसी का नाम ईमान है। जिसने ये कर लिया, फरोहम व रैहान, वो तो खुशबुओं के गुलदस्ते पेश किया जाएगा। इमेजिन करें, किसी बहुत बड़े इंसान का लोग इस्तकबाल करते हैं, मोहब्बतों के नजराने भी बिछाते हैं, नजरें और पलके भी बिछाते हैं, और फिर खुशियां भी मनाते हैं, कहते हैं हमें आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। तो यही फरिश्ते उस बंदे के साथ करेंगे कि उस वक्त उसका इस्तकबाल के नेमत भरी जन्नतें, रौह और रैहान, खुशबू, गुड स्मेल, बिल्कुल इमेजिनेशन में आता है कि दुल्हन का इस्तकबाल हो रहा है, और वो भी कोई आम घर में जाने वाली दुल्हन नहीं, कुशाही दुल्हन, किसी मुल्क की वजीर या मशीर की कोई घर में आने वाली दुल्हन। अल्लाह कहते हैं हम फूलों के गुलदस्ते पेश करते हैं, फ्लावर बकेट्स देते हैं, वह जन्नतु नईम, और नेम तो भरी जन्नत है, नेम तो भरी जन्नतें भी दे देते हैं, ये अल्लाह की शान है। चलिए ये एक मुकाम था। दूसरा, वम इनका न मिनसा बिल यमीन, और अगर वो होगा दाएं हाथ वालों में से, इकोनॉमी क्लास का बंदा, पहला कौन था, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, अपर क्लास, कुछ भी कह लीजिए, हाईस्ट कैटी का बंदा, इन लीड्स में से, अब ये दूसरा बेचारा जो है वो हम जैसा बीच का, डिचकू डिचकू ने किया, कभी रब को राजी किया, कभी नफ्स को राजी किया, कभी बंदों को राजी किया, कभी मुआशरे को राजी किया, फिर एकदम ख्याल आता है तो रब की तरफ चल पड़ते हैं, रमजान आता है तो रब का कुर्ब है, ईद आती है तो बंदों का कुर्ब है और सहेलियों और दोस्तों का कुर्ब है, और करते करते सारी जिंदगी समझ ही नहीं आई कि मेरा माबूद कौन था, कौन था जिसको मैंने खुश करना था। अल्लाह कहते हैं ऐसे बंदे का हाल के फसलामुल्लका, सलामती तुझको भी है, किस चीज से, आग से बच गए, जहन्नुम में नहीं गए, मिनस खाबिल यमीन, तुम्हें दाएं हाथ वालों में डाल दिया जाएगा, यानी राइट हैंडेड हो तुम, मुराद ये कि जहन्नुम से बच गए हो, लेकिन कोई इतना खास प्रोटोकॉल नहीं है। आपने नोट किया पहली आयतों में क्या था, फरोहम व रईहान, और अब क्या है, सिर्फ बस का दाएं हाथ वाले, यानी बगैर फूलों के किसी का इस्तकबाल हो गया, चलिए एक स्माइल दे दी कि चलो शुक्र है बहुत अच्छे हुए बच तो गए, यहां तक तो बात ठीक थी, चलो कुछ ना होने से कुछ तो मिला। लेकिन एक तीसरा किरदार, वइम्मा इनकान मिनल मुकज्जिबीन अद्दालीन, और अगर वो छुटलाने वाले गुमराह लोगों में से हो, दो लफ्ज नोट कीजिएगा, छुटलाने वाला और गुमराह, छुटलाता कब है बंदा, जब नफ्स मोटा होता है, मैं क्यों मानू, हो मेरी क्या बात है, मैं आपकी बात क्यों मानू, और दौलीन में कब होता है, जब इल्म नहीं हासिल करता, जहालत को पसंद करता है, कहता है सुन लिया सीख लिया तो अमल करना पड़ेगा, इसका इंजाम क्या है, फनुजुलुम मिन हमीम, तो इसकी तवाजो के लिए तो खौलता हुआ पानी होगा, हॉट ड्रिंक पेश किए जाएंगे, ये तो कोल्ड ड्रिंक्स का आदि था, वह तसलियतु जहीम, और जहन्नुम में झोंका जाना, इन्नहा ज़लहु व हक्कुल यकीन, ये सब कुछ कतई हक है। इस आयत को 3 दफा बोलती हूँ, इन्नहा ज़लहु व हक्कुल यकीन, ये सब कुछ कतई हक है, होनी शुदनी बात है, इसमें शक नहीं, हो के रहेगा, इन्नहा ज़लहु व हक्कुल यकीन, ये हक्कुल यकीन के दर्जे की बात है, करो क्या, फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, बस अपने रब्बे अजीम के नाम की तस्बीह करो। सूरत अल वाकिया की इन चंद आयतों से हमें ये पता चला कि मौत अपनी जगह पे कोई बुरी चीज नहीं है, जो चीज मौत को अच्छा या बुरा बनाती है वो इंसान के अमाल है, और हकीकत भी यही है कि जब काम किया होता है ना बच्चे ने स्कूल का, तो छुट्टियां गुजार के जाना अच्छा लगता है, पहले ही दिन सोच रहे होते हैं कि अच्छा अब लगता है कि हमें टीचर को काम दिखाना है, और जिन्होंने काम नहीं किया होता वो क्या कहते हैं, पहला हफ्ता घर बैठ जाओ, जब होमवर्क का सारा शोशा खत्म हो जाएगा तो फिर जाएंगे। मेरी और आपके लिए मौत क्या है, आज ही पता है मुझे भी और आपको भी, जो मेरी जिंदगी है वही मेरी मौत है, जैसी जिंदगी वैसी मौत, हदीस में आता है जैसा तुम जियोगे वैसा मरोगे, और जिस हाल पे मरोगे उसी पे उठाए जाओगे, ईमान की बुलंदियों पे जियोगे, अल्लाह मौत के वक्त तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह पेश कर देगा, जिंदगी इस्लाम वाली करोगे तो मौत ईमान वाली होगी, और अगर जिंदगी भर भागते ही रह गए तो वहां जाके पता नहीं क्या होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, याद रखिए कि मोमिन का नुक्ता नजर मौत के बारे में काफिर के नुक्ता नजर से बहुत फर्क होता है। लफ्ज मौत सुनते ही अगर आपको खौफ आता है ना, तो ये ताल्लुक के बिगाड़ की अलामत है, अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी के ना करने की दलील है। और अगर मौत के लफ्ज से अगर जेरे लब मुस्कुराहट आ जाती है, धीमी धीमी सी एक तबस्सुम और एक खुशी आती है कि चलो अब तो मुलाकात का वक्त करीब है, तो फिर खुशी मनाए। किसी से भी मोहब्बत होती है ना, तो जब उसको मिलने जाते हैं या उसको मिलने की उम्मीद होती है ना, तो कई दिन पहले ही तसव्वुर में झूम जाते हैं, कैसे मिलेंगे, कैसे देखेंगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे, फिर गले से लगेंगे। कितना कुछ इंसान सोचता है अपने रिश्तों को। सोचिए, आप 10 साल से पाकिस्तान नहीं गई और अब आपको जाना है इस साल छुट्टियों में, क्या दिल की कैफियत होगी? खुशी होगी, रास्ते की सौगतें तो हैं। यहां से मौत का नुक्ता नजर भी समझिए। ये जो हम कहते हैं ना, मौत की सख्ती, मौत की घबराहट, ये तो है ही, लेकिन इंजाम की खूबसूरती वो मुश्किल हल कर देती है। कैसे, मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ। हम सब यहाँ बैठे हैं इस वक्त अमेरिका की एक स्टेट कनेटिकट के एक शहर बर्लिन में बैठ के ये बात सुन रहे हैं, और आज डेट क्या है रेफरेंस के लिए बोल देती हूँ, 27 मई है, 2015 है, वेडनेसडे का दिन है। हम जब यहाँ से पाकिस्तान का सफर करते हैं, इमेजिन कीजिए कि आपको यहाँ से लाहौर जाना है, सीधे जाएं या बीच में कनेक्शन लेके जाएं, 15-16 घंटे से कम नहीं लगते। पाकिस्तान जाना बजाते खुद एक मुश्किल मरहला तो है, और हमने तो उसको कुछ और भी मुश्किल किया हुआ है। हमारी तैयारियां, फिर हमारा ओवरवेट और सामान और चीजें और जो कुछ भी है, ये सबको पता ही है पाकिस्तानी कल्चर क्या है, इसको क्या कहने की जरूरत है। लेकिन आप देखिए, एक जाना है जो आप अपने भाई की शादी का सोच के जा रहे हैं, और खूब तैयारियां वहां भी हैं और यहाँ भी हैं, और साथ ही आने वाले दिनों में जो कुछ करना कराना है उसका इंतजार भी है। सफर तो मुश्किल था, लेकिन क्या है, वहां जाके क्या कुछ मिलना है, उसने सफर को आसान कर दिया। और खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, किसी प्यारे करीबी की मौत की खबर या बीमारी की खबर सुन के जहाज में बैठे, तो सफर तो वो भी है, फर्क के वो कट जाएगा, ये काटे नहीं कटेगा। बच्चे की तकलीफ तो होती है डिलीवरी के वक्त, लेकिन बच्चे को मिल जाना, बच्चे को पा लेना, मां बनने का तसव्वुर औरत को खुशी खुशी वो दर्द सहने पे तैयार कर देता है। लेकिन अगर किसी औरत का अल्लाह ताला, मैं हमेशा हजरत मरियम का ही सोचती हूँ कि आम औरतों को तो डिलीवरी का सिर्फ पेन होता है ना, उसके बाद एप्रिसिएशन है, और माँ बनने का एक एजाज और एक ऑनर है, और लोगों की नजरों में मोहब्बत है। हजरत मरियम जब हजरत ईसा को जन्म दे रही थी, तो उस वक्त वो उस दर्द से बड़ा गम क्या था कि लोगों को क्या जवाब दूंगी, लोगों को क्या कहूंगी, ये बच्चा कहाँ से आया। एप्रिसिएशन तो दूर की बात है, वहां तो ताने इल्जाम और बहतानात का सिलसिला था। इधर तो एक तरफ माँ है और सास है, तो उधर तो अकेली मरियम दरख्त के तने के नीचे थी। तो क्या पता चला कि जब बच्चा मिलता है तो माँ खुश होती है। किसी औरत को पता चल जाए, अभी मैं आपको बताती भी, अभी एक रिसेंटली हमारी एक सिस्टर्स में से किसी के साथ एक बात हुई, औरत को ये पता है कि पैदा होगा बच्चा तो ठीक है, मेरी तकलीफ खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर ये पता लग जाए कि पैदा होने वाला बच्चा अब नॉर्मल है, पैदा होने वाला बच्चा बाद में किसी गैंग का कोई रुकन बन जाएगा, चोर बन जाएगा, कुछ भी हो, तो बताइए वो तकलीफ बढ़ जाती है कि कम होती है? बढ़ जाती है। हमारी एक सिस्टर है, उनके एक बेबी पैदा हुई, तो डॉक्टर्स के साथ सारे महीनों का रहा है, लेकिन मशीनें तो मशीनें ही होती हैं, उन्होंने नहीं बताया कि बच्ची में कोई प्रॉब्लम है। जो भी उसने इंतजार किया ना, वह बिल आखिर डॉक्टर्स ने कहा ऑपरेट करना पड़ेगा, और 3-4 माशाल्लाह पहले बच्चे हैं, हेल्दी सेहतमंद, नथिंग रॉन्ग, लेकिन ऑपरेट करके बच्ची निकाली, और जब बच्ची पैदा हुई तो पता चला बच्ची ठीक ही नहीं है, और डॉक्टर्स ने कहा कि ये खाएगी तो और प्रॉब्लम्स है, 6-7 दिन वो भूखी रह, रू के खत्म होके दुनिया से चली गई। तो वो माँ क्या कह रही थी कि मुझे पता होता इस बच्ची ने नहीं रहना तो मैं ऑपरेट तो ना कराती, लेकिन ये भी अल्लाह के हुक्म से होना था। तो बात मुझे लगता है समझ आ गई है, मौत अपनी जगह बुरी नहीं है। हदीस में आता है कि सबसे खूबसूरत चीज दुनिया में मोमिन की मौत है। क्यों? मोमिन की नजरें हमेशा दो चीजों पर लगी रहती हैं, एक जन्नत और एक रब का दीदार। और अल्लाह का वादा है कि ये दोनों चीजें मौत के दरवाजे से गुजरे बगैर मिलनी नहीं है। मरने के बाद इंसान को आसमानों पे ले जाया जाता है, वहां उसको थोड़ा बहुत टूर करवा दिया जाता है, लेकिन फिर कहा जाता है कि कब्र में अब इंतजार करो उस कयामत का, जिसके बाद असल जन्नत तुम्हें मिलेगी। और हदीस में आता है कि मोमिन कब्र में क्या कहता है, काश जल्दी से कयामत आए और मैं उस जन्नत में जाऊं जिसको मैं देख के आया हूं। और इसके बरक्स काफिर को भी पता चल जाता है, जब करने वाला काम वक्त पे कर ले तो उस काम का इंतजार होता है। आपने खाना बना लिया, अब आप मेहमानों का इंतजार करेंगे कि जल्दी आए, फ्रेश खाना खा के जाएं वक्त पे, ताकि मजा भी आए और काम भी खत्म हो। और अगर काम ही नहीं खत्म किया तो दिल करेगा वो ट्रैफिक में ही फंस जाए। यही करते हैं ना। तो मौत से डरना नहीं है। मौत क्या है, थोड़ा सा मैं आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करूंगी। आप देखिए कि माँ के पेट में बच्चा कितनी देर रहता है, कमोबेश 9 महीने, ठीक है ना, कुछ इधर कुछ उधर। एक बच्चा जो माँ के पेट में 9 माह रहा, और उसको वहां शोर भी होता है, आपने आज साइंस की ये बातें तो सुनी ली होंगी कि बच्चा ख्वाब भी देखता है, बच्चा रोता भी है, वो सोचता भी, और न जाने क्या कुछ। बल्कि वो किसी ने एक जोक बनाया हुआ था, कार्टून था, तो प्रेग्नेंट औरत है तो उसके पेट में बच्चा है, तो वो कहता है अम्मी मुझे ईमेल कब भेजेंगी, और अम्मी मेरा फेसबुक किधर है, और मेरी आईडी किधर है। यानी आज जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी जिंदगी में आ गई, तो माँ के पेट में भी बैठे वो आईपैड और आईफोन से खेलना चाह रहे होंगे। हाँ, तो ऐसी चीजें होती है ना। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक बच्चा जो माँ के पेट में ही अभी, उससे कोई पूछे भाई सुनाओ जिंदगी क्या है, दुनिया क्या है, तो क्या कहेगा? गोश्त के कुछ टुकड़े, थोड़ा सा फ्लूइड, कुछ खून जो माँ के पेट में होता है। कितनी है दुनिया, वो कहेगा एक बालिश इधर, एक उधर, एक उधर, कोई 3-4 बालिश जगह है जिधर मैं रहता हूँ। अगर उस बच्चे से कहें कि तुम्हें पता है कि पहाड़ भी कोई चीज है, वो ऐसे सख्त होते हैं, ऊंचे होते हैं, फिर उस पर चढ़ते ही जाते हैं, चढ़ते ही जाते हैं, तो वो मानेगा, कहेगा मैं तो नहीं मान सकता, मैंने तो नहीं कभी सोचा इसके बारे में। फिर आप कहते हैं तुम्हें पता है समंदर भी एक चीज होती है, इतना पानी, इतना पानी, इधर से उधर देखो तो पानी ही पानी, बच्चा मानेगा? उसके तसव्वुर की हदों से ऊपर है ये बात। लेकिन क्या होगा जब दुनिया में आएगा, तो दुनिया में आने के बाद वो देख लेगा, कुछ सालों का होगा, उसको पहाड़ भी दिखेंगे, समंदर, दरिया, फिर वो कहेगा हाँ ये तो सब सच है। पहली बात तो समझिए कि हमारी इस दुनिया और आखिरत की तकसीम ऐसे ही है। माँ के पेट में जब एक बालिश बराबर जगह को हमने अपनी दुनिया समझा था ना, इसी तरह जब हम इस दुनिया में आए जो माँ के पेट की निस्बत बहुत बड़ी थी, जब हम इस दुनिया से आगे जाएंगे ना, तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। ये दुनिया आखिरत की दुनिया के मुकाबले में इतनी छोटी है जैसे माँ के पेट के मुकाबले में ये दुनिया। ग्लोब को जेहन में रखे और माँ का पेट जेहन में रखे, उस ग्लोब में क्या दुनिया की चीजें भरी हुई हैं। आज यहाँ रहते हुए तस्वुर भी नहीं आता कि आखिरत क्या होगी, ना जन्नत ना जहन्नम। ये तो अल्लाह ताला ने सूरह सजदा में जन्नत के लिए कहा है ना कि फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, कोई नफ्स नहीं जानता कि उसकी आंखों की ठंडक के लिए रब ने तैयार क्या किया। लेकिन याद रखिए यही कानून जहन्नुम के लिए भी है। जिस तरह हम इस दुनिया में रहते हुए जन्नत के बारे में इमेजिनेट नहीं कर सकते ना, इसी तरह हम जहन्नुम के अजाबों को भी इमेजिनेट नहीं कर सकते। चलिए उसी मिसाल पे वापस आइए। माँ के पेट में बच्चे को दुनिया इतनी छोटी लगी, बाहर आने पे बड़ी लगी। बिलफर्ज किसी माँ के पेट में 2 बच्चे हों, ट्विंस कह लीजिए, 9 महीने तकरीबन साथ रहे, और अब क्या हुआ, उनमें से एक डिलीवर हो गया। वो जो दूसरा बैठा हुआ है, कुछ से पूछे सुनाओ भाई तुम्हारे भाई का क्या हुआ, कहेगा अफसोस मेरा भाई आज फौत हो गया। वो कहेंगे नहीं नहीं फौत नहीं हुआ, दुनिया में गया है, वहां बहुत प्यारे उसका इंतजार कर रहे हैं, उसकी माँ है, उसकी मामू है, नानी है। तो कहेगा नहीं मेरे साथ नहीं है, तो बस चला गया। यही कहानी एक बार फिर दोहराई जाएगी हमारी असली मौत पे। हम रो रहे होते हैं अपने प्यारे के जाने पे, और जो पहले से वहां मौजूद है वो खुशियां मना रहे होंगे। जिसने इस दुनिया से जाते हुए अपने आप को इस दुनिया की नजर से देखा तो नुकसान है, लेकिन अगर अगली दुनिया की नजर से देखिए तो वो फायदा है। एयरपोर्ट पे जब आप जाते हैं, इधर वाले रो रहे होते हैं, हाय ना जाएं, कब जाएंगे, कब आएंगे, और जो आपको लेने आए हैं रिसीविंग एंड पे, वो खुश है। कभी भी कोई उदास हो किसी के साथ, तो ये सोच ले कि जिधर जा रहे हैं वो खुश भी तो है ना। अगर कोई आपके जाने पे उदास भी है तो जिंदगी फना नहीं है। जो बड़ा बड़ा करके लिख लीजिए कि मौत फना का नाम नहीं है, मौत ट्रांसफर है, बस एक जहां से दूसरे। और जिंदगी एक मुख्तसिर सा वक्त जो मुझे और आपको मिला, इस वक्त का सही हक वही अदा कर सकता है जिसको अपने आगाज की भी खबर हो और जिसको अपने अंजाम का भी पता हो।